शिक्षार्थियों, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। भाव पल्लवन एक लेखन कौशल की प्रमुख विधा है। भाव पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। जैसे प्रतिदिन के बोलचाल में हम लोग बहुत सी ऐसी उक्तियों का प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं या सूक्तियों का प्रयोग करते हैं,
कहावतों का भी प्रयोग करते हैं
जिसमें गंभीर अर्थ छिपा होता है ना
जी।
जैसे जहां सुमतिता संपत्ति नाना, है ना, इस तरह से कोई लाइन हमने बोल दी लेकिन दूसरे को समझ में नहीं आएगा जब तक वह उसका अर्थ नहीं समझता है
जी।
या कहते हैं अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, इनके जो पंक्तियां क्या नाम है जयशंकर प्रसाद जी की, बहुत सी जगह कोट कर देते हैं हम
जी।
अर्थ क्या है उसका, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे न जाने कितने से प्रयोग हम आम जीवन में करते रहते हैं
जी।
लेकिन हम ये नहीं जानते कि इन प्रयोगों का विस्तार कैसे किया जाए। तो चूंकि आप उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र हैं और आगे आपको छोटे छोटे वाक्यों को विस्तार देने की कला को सीखना होगा, इसीलिए इस पाठ को लिया गया है। विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जो वाक्य कहा गया है वह जटिल होता है, सघन होता है, संक्षिप्त होता है, उसमें अर्थ की अनंत संभावनाएं होती हैं, इसीलिए उनका उल्लेख करना, उनमें निहित अर्थों को व्याख्यायित करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस पाठ में भाव पल्लवन का अर्थ भी बताया गया है, भाव पल्लवन और दूसरी विधाओं जैसे व्याख्या के साथ क्या अंतर है, संक्षेपण के साथ क्या उसका अंतर है, उसे भी बताया गया है। उसके अलावा भाव पल्लवन के कुछ नियम होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और भाव पल्लवन में ध्यान योग्य रखने वाले बातें क्या होती हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाव पल्लवन का अर्थ क्या है। जैसे हम बातचीत के दौरान अपने विचारों को व्यक्त करते हैं एक दूसरे के साथ और समझने की भी कोशिश करते हैं, अगर आपके साथ कोई बात कर रहा हो और आप उसकी बातों को नहीं समझ सकें तो संवाद नहीं माना जाता उसे। तो जैसा मैंने बताया कि हम आम जीवन में बहुत सी सूक्तियों का प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, लेकिन वो सूक्तियां दूसरे के लिए कई बार मुश्किल हो जाती हैं, वो समझ नहीं पाता कि आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे एक पंक्ति है कि हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी चीज है
जी।
अब आपने प्रयोग कर दिया, सामने वाले को समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहा। तो इस तरह के छोटे छोटे वाक्य बड़े ही भाव गांभीर्य से भरे होते हैं, इनको हम सूत्र वाक्य भी कहते हैं
जी।
अगर इनका विश्लेषण किया जाए तभी हमें पता लगेगा कि इन वाक्यों में संदेश क्या छुपा हुआ है। अब एक पंक्ति आप लोग प्रयोग करते हैं, गागर में सागर भरना
जी जी,
है ना
जी।
आपने तो प्रयोग कर दिया लेकिन इसका अर्थ क्या होगा और किस संदर्भ में आपने प्रयोग किया है
जी,
वहां पे अर्थ देखना पड़ेगा।
या फिर ऐसे ही कह दिया, कोई मतलब नहीं था।
हाँ वही है कि आपने प्रयोग तो कर दिया लेकिन सार्थक प्रयोग है कि नहीं।
बिल्कुल सर,
जैसे अभी बिहारी हमने पढ़ा, बिहारी के कविताओं के बारे में कहा जाता है कि गागर में सागर भर दिया उन्होंने
जी जी,
है ना
जी,
क्योंकि दो पंक्तियों में गंभीर से गंभीर बातों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, इसीलिए गागर में सागर कर दिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 5 मिनट में ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह देता है
जी,
तो हम कहते हैं कि आपने गागर में सागर भर दिया,
मतलब छोटी सी बात में बहुत कुछ कह देना।
हाँ, थोड़ी देर में ही बहुत सारी बातें कर दी
आपने।
तो ये भाव पल्लवन का केंद्र बिंदु होता है कि उसमें कोई सूक्ति होती है, कोई वाक्य छोटा होता है, कोई उक्ति होती है, कोई सूत्र वाक्य होता है
सर,
उसका
ये पूरी तरीके से बंधन मुक्त होता है, इसमें आप कुछ भी समावेश कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसको आप मतलब मनगढ़ंत चीजें भी आप इसमें बोल देते हैं चाहे उसका अर्थ हो नहीं हो, बंधन मुक्त होता है प्रबंधन करना।
हाँ, मतलब आप कहना चाहते हैं कि कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है कि आपको यही लिखना है यही बोलना है। और बहुत से लोग समझते हैं कि भाव पल्लवन और व्याख्या में अंतर क्या है, तो यहाँ व्याख्या नहीं करनी है आपको, आपको उस सूक्ति वाक्य के संदेश को स्पष्ट करना है कि उस सूक्ति में अर्थ क्या है, और उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मान लीजिए ये पंक्ति है, इस पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए आप स्वाधीनता संग्राम के जो हमारे संदर्भ हैं अलग अलग, भगत सिंह का उदाहरण ले सकते हैं, चंद्रशेखर का उदाहरण ले सकते हैं।
जी सर।
और आप समझ सकते हैं कि उन लोगों ने स्वाधीनता के लिए क्या क्या संघर्ष किया।
जी।
तो उन चीजों को लेकर अपनी बात को आप स्पष्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे देशभक्त हुए जिन्होंने स्वाधीनता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा, इसीलिए अपने को कुर्बान भी कर दिया कि हमें आजादी चाहिए।
जी।
तो यहाँ पे केंद्रीय भाव जो होता है उसको स्पष्ट किया जाता है, इसको समझना शिक्षार्थियों आपके लिए जरूरी है। अब भाव पल्लवन और संक्षेपण या निबंध में क्या अंतर है ये भी शिक्षार्थियों को जानना चाहिए। अब संक्षेपण में आप देखें कि एक तिहाई भाग में किसी भी बात को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां पे आपको विस्तार को संक्षेप में किया जाता है, लेकिन भाव पल्लवन में इसके उल्टा संक्षिप्त वाक्य को विस्तार में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये अंतर समझ में आ गया होगा आपको। उसी तरह से निबंध में, निबंध की एक शैली होती है, उसमें प्रारंभ होता है, मध्य होता है और उपसंहार होता है, उसी क्रम में लिखा जाता है, लेकिन भाव पल्लवन में हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब हम समझें कि भाव पल्लवन की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि आपने देख लिया कि भाव पल्लवन क्यों किया जाता है। इसकी प्रक्रिया में कुछ चरण हैं। पहला, किसी उक्ति सूक्ति कहावत लोकोक्ति आदि को समझना। अगर आपने समझा नहीं तो आप लिखेंगे कैसे उसके बारे में। दूसरा है, उक्ति सूक्ति आदि के मूल भाव को स्पष्ट करने वाले विचार बिंदुओं को लिखना, अर्थात आपने विषय को समझ लिया
जी,
उसमें किन किन बातों का चिंतन आप करने जा रहे हैं
जी,
उसको लिखना पड़ेगा बिंदुवार, और उसका एक क्रम होना चाहिए।
बिल्कुल सर।
जैसे हमने बताया अभी कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको आपको लिखना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा क्रम क्या रहेगा लिखने का,
हमें कहाँ से शुरू करना होगा, किस चीज को लेकर, विषय क्या रहेगा, को किस तरीके से स्टार्ट करके कहाँ तक लेकर आना होगा।
हाँ जी। तो विस्तार करने का भी हमें तरीका पता होना चाहिए कि किसी बात को कैसे हम स्पष्ट करेंगे।
जी सर।
मान लीजिए कि हम उक्ति कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई,
जी।
प्रयोग तो कर दिया हमने
जी,
अर्थ क्या है उसका, तो आपको उसका पूरा संदर्भ समझना पड़ेगा कि क्यों कहा गया। और जो शैली होती है कहने की वो बहुत प्रभावपूर्ण होनी चाहिए।
सर, इसमें ब्याज शैली का प्रयोग करते ना, हम समास शैली का प्रयोग नहीं करते।
नहीं, यहाँ ब्याज शैली है क्योंकि व्याख्या कर रहे हैं।
हाँ, समास का नहीं यूज करते हैं।
समास का संक्षेपण में करते हैं।
जी जी जी,
है ना, संक्षेप में करते हैं
जी।
तो ये प्रक्रिया है, इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं कि पहले हम क्या करते हैं। सर्वप्रथम किसी दी हुई मूल उक्ति सूक्ति या कहावत पर थोड़ी देर हमें विचार करना चाहिए
जी,
और उसके मूल भाव को समझना चाहिए
जी।
मान लीजिए शिक्षार्थियों, आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें एक भाव पल्लवन के लिए आ गया, एक पंक्ति आ गई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई
जी।
अब आपको पहले सोचना पड़ेगा कि इसका मूल भाव क्या है।
बिल्कुल सर।
है ना, जब आपको समझ में आ गया कि दूसरे का कल्याण करने से बड़ा पुण्य काम कुछ भी नहीं है, अगर आपके आपको ये अर्थ समझ में आ गया
जी,
तो फिर आप उनको विचार बिंदुओं में अलग अलग उसके बारे में आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं उसको लिखेंगे, और उसके बाद उसको एक सीक्वेंस देंगे, एक क्रम देंगे उसको
जी,
और मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए फिर उदाहरण देंगे,
बिल्कुल सर,
और भाषा को सरल रखेंगे, सुबोध रखेंगे
जी।
उसके बाद एक और विशेषता होती है इसकी भाषा की कि छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। मान लीजिए एक सूक्ति आपने व्याख्या करनी शुरू की और आप चार सूक्ति और डाल दी उसमें आपने,
तो अर्थ का अर्थ हो जाता,
फिर वो क्या फायदा हुआ?
सही बात है,
है ना
सर। अभी जो आपने बताया था चोर चोर मौसेरे भाई, इसकी जगह हम कभी कभी ये भी उसका भी इस्तेमाल करते हैं ना, जग जैसा जग कैसा मुझ जैसा, तो हम इस चीज को भी यहाँ पे उसको लेकर आते हैं, तो दोनों का भाव तो एक ही निकलता है, पर वो ये कहने कहने का डिफरेंस होता है सर।
बहुत सारे हैं
जी,
आप आम जीवन में अगर ध्यान देने लगे
जी,
तो हम प्रतिदिन सोचें तो चार पांच मुहावरे का
हाँ सर, हम पूरे दिन में यूज कर ही देते हैं, बिल्कुल कर भी देते हैं सर, हो जाता है जी।
तो इसलिए हमें ध्यान नहीं जाता वो, चूंकि हम व्यवहार में हैं, लेकिन उसका अर्थ दूसरे को समझ में आया कि नहीं ये जानना जरूरी है,
क्योंकि तुम जो बात कह रहे हो वो ऊपर से जा रही है या अंदर जा रही है, ये समझना ज्यादा जरूरी है जी,
है ना। मान लीजिए मैंने कोई प्रसंग श्री कृष्ण का प्रसंग बता दिया किसी को
जी,
उसको मालूम ही नहीं कहानी है
बिल्कुल,
तो समझ में क्या आएगा उसे,
सही बात है सर,
है ना
जी।
तो इसलिए इसको जब भाव पल्लवन आप लिखें तो सरल भाषा में लिखें, अन्य पुरुष में लिखें
जी,
है ना, और अनावश्यक बातें नहीं लिखें। भाव पल्लवन आप कर रहे हैं तो प्रासंगिक बातें लिखें जो उस सूक्ति से संबंधित है। कई बार ये होता है कि विषय से अलग हट गए बच्चे, लिखना कुछ और था, कुछ और लिख रहे हैं उसमें, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको इन प्रक्रियाओं को समझें, और आपके अध्ययन सामग्री में कई सारे उदाहरण भी दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं, उसमें सीख सकते हैं और अभ्यास भी कर सकते हैं
जी, बिल्कुल सर।